हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के भागवत कक्षा में, और ये सातवां स्कंध अध्याय एक और श्लोक संख्या तीन। इति नासु महाभागा नारायण गुणान प्रति संशया सुमहान जाता तद्भवांश्चेतुमर्हति इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशया सुमहान जाता तद्भवांश्चेतुमर्हति इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशया सुमहान जाता तद्भवांश्चेतुमर्हति। शब्दार्थानुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृपया पीछे दोहराइए। इति इस प्रकार, नह हमारा, सुमहाभागा हे भाग्यवान, नारायण गुणान नारायण के गुणों के प्रति संशया संदेह, सुमहान अत्यंत महान, जातः उत्पन्न, तथा वह भवान आप क्षेतुम अर्हति कृपया दूर कर दें। अनुवाद कृपया पीछे दोहराइए। हे सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम हैं। तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य है, चूंकि भगवान नारायण परम हैं अतएव उनके दिव्य गुणों का वर्णन एक सा है, इस तरह उनके द्वारा दिए गए दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। मूलतः उनके शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथा कथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता के प्रदर्शन नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के प्रति अनुकूल हैं और अभक्तों के प्रतिकूल। जब भगवद गीता में कृष्ण अंतिम रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज का उपदेश देते हैं, तो यह केवल अर्जुन के लिए नहीं है अपितु इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए है। हरे कृष्णा। तो अभी छठा स्कंद समाप्त हो गया और यह सातवें स्कंद का तीसरा श्लोक है। बट इसकी शुरुआत प्रश्नों से होती है और महाराज परीक्षित जो है वो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में, वो प्रश्न इस तरह से पूछ रहे हैं कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं, और ये जो भगवान जो है, जैसे कि अब ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, क्या पक्षपात किया भगवान ने। तो ये सारी कथा जो है छठे स्कंद में बताई गई है। जो वृत्रासुर का वध हुआ था तो भगवान ने देवताओं का सो कॉल्ड तथा कथित पक्ष लिया, जैसे कि बताया था कि भगवान देवताओं की तरफ से जो है, हम सबके मन में होता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, है कि नहीं है? यस और नो, लेते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। तो यही प्रश्न जो है सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं कि क्या भगवान ही पक्षपात करते हैं। अब क्यों पूछा ऐसा प्रश्न कि भगवान पक्षपात करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा जो वृत्तासुर का जो वध हुआ था उसमें हालांकि भगवान का भक्त थे वृत्तासुर, परंतु उपाय किसने बताया उसके मारने का? भगवान ने बताया था। क्या उपाय बताया? दधीची मुनि की हड्डी लेके आओ, उसका वज्र बनाओ और फिर जो है उससे वृत्रासुर का वध होगा। आप देखोगे कि इसी भागवतम में जो इंद्र का कैरेक्टर है, जो इंद्र का चरित्र है, वो हर जगह कुछ उन्होंने इस तरह के काम करते हैं और पता लगता है कि भगवान उनके फेवर में आ गए, ऐसा दिखता है। वो अलग बात है कि अभी हम नहीं बोल रहे हैं उसमें, हमें लगता है कि भगवान जो है देवताओं का फेवर करते हैं और जब भगवान देवताओं के फेवर में आ जाते हैं इमीडिएटली। जैसे इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, किसका? बृहस्पति का। क्या अपमान किया? कि उनकी राजसभा में आए और वो खड़े नहीं हुए, उनका आदर सम्मान नहीं किया। और बृहस्पति ने जब शाप दे दिया तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए एक दूसरे गुरु बना लिए। किसको गुरु बनाया? विश्वरूप को। और जब ये देखा कि विश्वरूप भी पक्षपात कर रहे हैं तो उनकी गर्दन काट दी। जिसको गुरु बनाया उसी की गर्दन काट दी। तो फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, यानी ब्राह्मण की हत्या का और उसका पाप लगा। तो फिर क्या किया इंद्र ने? उन पापों को अलग अलग लोगों में बांट दिया, चार लोगों में बांट दिया वो पाप। आप ये सब कथा सुन चुके हो पहले भी कि उन पापों को जो है उन्होंने अलग अलग जगह पर बांट दिए। और इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे जो पृथ्वी महाराज की वो आती है, पृथ्वी महाराज की कथा आती है चौथे स्कंद में, उसमें देखते हैं घोड़ा चुरा लेते हैं वो 99 अश्वमेध यज्ञ के बाद। तो इससे इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं और लगता है कि भगवान उनका फेवर कर रहे हैं, कि भगवान प्रकट हो जाते हैं इंद्र की तरफ से, या कई बार ऐसा होता है कि इंद्र को तब भी सपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो है वो प्रक्षित महाराज के प्रश्न दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? ये जो पक्षपात है, ये शत्रुता है, मित्रता है, यश है, अपयश है, मान है, सम्मान है, ये सब भौतिक जगत की डुअलिटीज हैं, भौतिक जगत के द्वंद है। इसका कष्ट, ये जो इसका जो अनुभव है केवल भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत में इसका अनुभव नहीं होता, या आध्यात्मिक व्यक्ति को इसका अनुभव नहीं होता। यहां भी अब जो व्यक्ति पूर्णतया आध्यात्मिक है वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। आप प्रहलाद महाराज का को देखिए कि उनके पिता उनको अपना शत्रु मानते थे, पर प्रहलाद महाराज ने कभी अपने पिता को शत्रु नहीं माना, कभी नहीं माना उन्होंने अपना शत्रु, असुर श्रेष्ठ या इस तरह से संबोधित करते थे मन, कि उन्होंने कभी अपना शत्रु नहीं माना। तो ये जो आध्यात्मिक वादी हैं या आध्यात्मिक लोग हैं उनमें ये गुण आ जाता है। तो फिर भगवान तो पूर्णतया जो है वो फुली स्पिरिचुअल हैं, तो उनमें ये कैसे, किस पक्षपात की बात कैसे आ गई? तो परीक्षित महाराज जो हैं यही पूछ रहे हैं कि कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन और सबों के प्रति सम है। कि मेरा ये विश्वास है कि भगवान सबके प्रति सम है और उदासीन है, वो किसी भी जीवात्मा के जो है उसका आध्यात्मिक विकास होता है या फिर वो भगवान से दूर चला जाता है तो भगवान हर हमेशा उदासीन रहते हैं। आप इस बात को सत्य साबित करिए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे ये संदेह हो गया है कि क्या नारायण पक्षपात करते हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में कि भगवान सचमुच के असन जो है वो देवताओं का पक्ष लेते हैं। सच सच बताइए, आप सबको भी लगता है भगवान पक्ष लेते हैं देवताओं का? नहीं लेते? वेरी गुड, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। और सच्चाई भी यही है कि भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, न देवता का, न भक्त का, न असुर का, किसी का पक्ष नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उससे पहले भगवद गीता में कल महाराज भी बता रहे थे कि 9वें जो अध्याय है उसका 29वां श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषेस्तु न प्रिया, कि मैं सबके प्रति समान हूँ, मुझे मेरे अंदर किसी के लिए द्वेष भी नहीं है और किसी के लिए प्रेम भी नहीं है, मतलब उदासीन है भगवान। तो फिर और बड़ा अच्छा बताया महाराज कि ऐसा क्यों, ऐसा भाव क्यों है भगवान के अंदर, क्योंकि श्री राधा राधिकानंद भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौर निताय जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, ये भाव भगवान के अंदर कौन क्यों है कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कह रहे हैं कि सभी योनियों में बीज देने वाला पिता कौन है, मैं स्वयं हूँ। तो अपने संतान के प्रति जो व्यक्ति है वो कैसे पक्षपात करेगा, करेगा नहीं करेगा, बट तब भी होता है, दिखता है पक्षपात हो रहा है, नहीं दिखता, पापा ने बड़े बेटे को ज्यादा दे दिया, मुझे तो दिया नहीं, पर फिर भी एक चीज है उसमें, और वो है कि जो भगवान केवल रिसिप्रोकेट करते हैं, पक्षपात नहीं करते, रिसिप्रोकेट आदान प्रदान करते हैं। अगर कोई उनसे प्रेम करता है तो वो भी उनसे प्रेम करेंगे, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान भक्तों का पोषण करते हैं, तो वो जिस रूप में जो है आदान प्रदान करना चाहेगा, जो भाव रखेगा, भगवान भी उसी भाव में उसको रिसिप्रोकेट करेंगे। तो इस ये देखकर हमें लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, आप समझ रहे, ये देख के हमें लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं या भगवान के अंदर शत्रुतापूर्ण व्यवहार है किसी के प्रति, असुरों के प्रति या किसी के प्रति, परंतु ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। और यही जो आंसर है जो इसमें, हालांकि अभी सुखदेव गोस्वामी इस पर बोलना शुरू करेंगे, और ये काफी ये चैप्टर है जिसमें पूरा उन्होंने समझाया है कि भगवान किस तरह से जो है वो पक्षपात नहीं करते हैं, और इम्पार्शियल हैं भगवान, पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल हैं। और इसी को सुखदेव गोस्वामी ने इस पूरे चैप्टर में जो है स्थापित किया है। तो क्योंकि जो व्यक्ति है, जब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये जब भगवान जो है चिन्मय है और भगवान जो है वो दिव्य हैं, तो किसी दिव्य व्यक्ति के अंदर जो है ये इसका इस तरह का असुरों का भय क्यों आएगा, या किसी कोई दिव्य व्यक्ति जो है अपने अंदर शत्रुता कैसे रख सकता है। आप देखो ना, कोई बहुत बड़ा हमारे यहाँ भी कोई सन्यासी हैं इस्कॉन के ही या बाहर के, आप जब बहुत एलिवेटेड होते हैं तो उनके लिए अपना डिसाइपल हो या दूसरे का डिसाइपल हो, इक्वली ट्रीट करते हैं सबको, परंतु फिर भी एक चीज उसमें बनी रहती है कि जो उनसे ज्यादा प्रेम करना चाहता है या जो उनके ज्यादा नजदीक जाता है, जो उनके ज्यादा पास जाता है, तो उनको वो थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। तो ये पार्शियलिटी नहीं है एक्चुअली में, पार्शियलिटी तो ये होगी कि अगर वो उनको नहीं बढ़ाएंगे, जो उनसे प्रेम करता है अगर उसको प्रेम नहीं करेंगे, ये पार्शियलिटी हो जाएगी फिर, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है और आप उसको प्रेम नहीं कर रहे, तो ये गुण है भगवान में कि उनको जो प्रेम करेगा उसको प्रेम करेंगे। मतलब केवल जैसे इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे किसी बाप के चार बेटे हैं और एक बेटा कहता है पापा आओ बैठ के शतरंज खेलते हैं, तो पिताजी उसके साथ शतरंज खेलने लगते हैं, और एक दूसरा बेटा कहता है आओ पापा आज फाइटिंग करते हैं, तो कहते हैं आ बेटा चल फाइटिंग करते हैं। क्या है ये भी रिसिप्रोकेशन है, ये भी आदान प्रदान है, इससे वो भी बेटे को आनंद देने के लिए ही है। वो फाइटिंग किस लिए, क्योंकि एक बेटा लड़ना चाहता है और पापा चलो फाइटिंग करते हैं, क्या चल आजा कर लेते हैं, तो रिसिप्रोकेट कर रहे हैं ना वो भी वहां पर भी। और एक कहता नहीं आप मेरे पास बैठ के मेरे साथ खेलो, क्या ठीक है खेल। हमारे मेटेरियल जो हम चूंकि कंडीशन सोल हैं, हम भौतिक जगत में रहते हैं, हमारी अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से हम समझते हैं कि भगवान जो है वो पहले वाले बेटे के साथ मित्रता है और दूसरे बेटे के साथ शत्रुता है, परंतु है नहीं ऐसा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में भगवान केवल रिसिप्रोकेट कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। हमें लगता है कि वहां शत्रुता है और वहां मित्रता है। अगर देवता उनके पास जाते हैं बार बार किसी चीज के पूछने के लिए और उनसे पूछते हैं तो निश्चित रूप से भगवान बताएंगे, वो भगवान का कार्य है। आप देखो ऐसा नहीं कि वो इंद्र को बहुत उन्नत भक्त मानते हैं भगवान, परंतु फिर भी जब इंद्रादि देवता जब क्षीर सागर पे ब्रह्मा जी के साथ प्रार्थना करने जाते हैं हर छोटी सी मुसीबत के समय तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल पोजीशन के वजह से प्रकट होते हैं। इसको लौकिक एग्जांपल से समझिए, चीफ मिनिस्टर्स हैं देश के, उसकी प्राइम मिनिस्टर से मान लीजिए नहीं भी बनती है, पर देश पर जब खतरा आएगा तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा ना, जी खतरे हैं आजी अब समझो, तो प्राइम मिनिस्टर उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस हैसियत से मिलेगा, ऑफिशियल हैसियत से मिलेगा। अभी देश पर खतरा है तो मुझे इस व्यक्ति से मिलना ही होगा। जब भी इंद्रादि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान आप देखते होंगे इंद्र प्रार्थना करने जाते हैं एकदम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, या आकाशवाणी हो जाती है, या ब्रह्मा जी को भगवान जो है वो बता देते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर लो। तो ये भगवान ऑफिशियल पोजीशन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि इस सृष्टि का जो भार है मेंटेनेंस का भार किसका है, क्षीरोदक्षाई विष्णु का है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जब भी सृष्टि में कोई समस्या होगी और देवता उन्हें बताएंगे कि हमसे नहीं समझ रहा है तो भगवान आएंगे फिर। तो हमें लगता है कि ये पक्षपात है कि देवता गए भगवान उनके साथ आ गए, नहीं, भगवान ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आए और उनको ये समझाया कि ठीक है तुम ये नहीं है। जैसे आप बित्रासुर के इसमें देखिए केस में, जब देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं कि बित्रासुर की वजह से बहुत प्रॉप समस्याएं हो गई हैं, तो भगवान जो है वहां पर प्रकट होते हैं और फिर उन्हें कहते हैं मैं बित्रासुर को नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि वो आप उनका भक्त है। कह रहे लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूं जिससे बित्रासुर मारा जाएगा। अब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल पोजीशन की वजह से वो उनका काम है कि इस भौतिक जगत में कोई उपद्रव ना हो, कोई हलचल ना हो, कोई समस्या ना हो, और जो जो राज्य है जो इंद्र का राज्य है जो स्मूथली देवतागण राज कर रहे हैं उस बहुत आसानी से चलता रहे। इसलिए भगवान जो है वहां प्रकट होते हैं और बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे दधीची के पास जाओ, उनकी हड्डियां मांगो और फिर उनसे वज्र बनाओ जिससे वो मारा जाएगा। उन्होंने एक रास्ता बता दिया और कई बार खुद भी आते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी तरफ से आता हूं। तो ये वो करेंगे क्योंकि पोषण का काम है उनका, मेंटेनेंस का काम उनका है, तो ये उनका दायित्व है, उनके कर्तव्यों में निहित है ये। हालांकि भगवान इससे करें नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचना, कि मेरे कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु एज ए विष्णु, एज ए क्षीरोदक्षाई विष्णु, एज ए मेंटेनर, ये उनकी ड्यूटी है कि ये भौतिक जगत जो है ये सारा ब्रह्मांड जो है मेंटेन रहे। तो भगवान जो है फिर प्रकट होकर के फिर कोई ना कोई उपाय बता देते हैं। तो परीक्षित महाराज यही कह रहे हैं कि जो ये परमात्मा में त्रुटि कैसे हो सकती है, त्रुटि कैसे, क्योंकि उन्होंने इंद्र का पक्ष लिया। उनके अंदर ये प्रश्न उठता है, वो सबके प्रति दयालु हैं, सब जीवों के प्रति दयालु हैं, तो इंद्र के प्रति अधिक दयालु क्यों। अगेन ये है कि इंद्र के प्रति अधिक दयालु नहीं है भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान को इंद्र के बारे में जानते नहीं है, परंतु ऑफिशियल पोजीशन की वजह से भगवान ऐसा करते हैं और वो हमें दिखता है कि भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया। यही है जैसे, और एक क्वेश्चन जो परीक्षित महाराज एक और पूछते हैं कि भाई देवताओं का पक्ष लेने से उनको क्या फायदा मिलेगा। बड़े सारे क्वेश्चन को उन्होंने जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को एक साथ जोड़ के मतलब ये साबित करना चाह रहे थे कि भगवान जो है हालांकि उदासीन है, हालांकि उनको खुद विश्वास है। अब देखिए इसका जो अनुवाद इससे पता लगता है कि कृपया निश्चित साक्ष द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबकों के प्रति सम है। उनको विश्वास है कि भाई नारायण सर्वदा जो है उदासीन है और सबके प्रति बराबर है, समान है, तो फिर मेरे अंदर यह संदेह क्यों उत्पन्न हो रहा है कि भगवान पक्षपात करते हैं। तो इसको इस संदेह को दूर करिए। तो इस संदेह को दूर करने के लिए जो है वो फिर ये सब चर्चियां तर्क देते हैं। जैसे आप, जैसे इसमें एक और लाइन लिखा हुआ है कि शत्रुता और मित्रता, जैसे इसमें लिखा है कि दंड और वरदान दोनों एक सा महत्व है। भगवान अगर किसी को दंड देते हैं या वरदान देते हैं तो दोनों का इक्वल महत्व है, क्योंकि भगवान ट्रांसडेंटल हैं, दिव्य हैं। जैसे आप चित्रकेतु के प्रसंग में देखिए, महाराज चित्रकेतु को शाप दिलवा दिया भगवान ने, किससे? माता पार्वती से। क्या पर्पस सॉल्व हुआ इसमें? वो भगवान के धाम जो है जल्दी आ गए। आप देखिए वो भगवान, उनको जो महाराज चित्रकेतु थे, वो उनको भगवान को उनको अपने धाम लाना था, क्योंकि वो भगवान हमेशा जो है, जो उसमें बताते हैं कि उस विमान में, जिस विमान में वो विचरण करते थे, उस विमान में अन्य दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी सुंदरियां होती थी उनके साथ, तब भी उनका मन विचलित नहीं होता था और वो भगवान का स्मरण करते थे और भगवान की कथा करते थे। तो ऐसे भक्त को भगवान अपने पास लाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या उपाय किया जल्दी से, कि उन्होंने जो है पार्वती से सांप दिलवाया। तो सांप दिलवाया तो फिर ये बित्रासुर बने, और बित्रासुर बने तो फिर भगवान के धाम आए। देखिए अब बित्रासुर के केस में भी, जब इंद्र अपना वज्र नहीं छोड़ रहे थे तो बित्रासुर ने उन्हें कहा कि छोड़ो ये वज्र, जैसे कि उन्होंने कई अस्त्र छोड़े तो उन्होंने अपने मुंह में निगल लिया बित्रासुर ने, किसी को हाथ से हटा दिया, किसी कुछ जो भी अस्त्र छोड़ते थे ऐसे हटा देते थे। अब इंद्र को यह संदेह हुआ कि ये वज्र को भी कहीं पकड़ ना ले, ये वज्र से भी मारा जाएगा कि नहीं। तो बित्रासुर ने कहा इसी वज्र से मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये भगवान ने तुम्हें ये उपाय बताया है, इसलिए अपना वज्र उठाओ और मेरे ऊपर चलाओ। आप समझ रहे, वो कहना, इंद्र को कहना कि अपना वज्र उठा के मुझे मारो, मैं उसी से मरूंगा और किसी चीज से नहीं मरूंगा मैं। तो आप कैसे ग्लोरियस व्यक्ति है, देखिए चित्रकेतु का है, बित्रासुर का कितनी ग्लोरी फैली। कहीं महाराज लोग एक बार बता रहे थे, यहीं से प्रवचन कर रहे थे, तो कि पता नहीं बित्रासुर का अगर प्रसंग नहीं होता, चित्रकेतु का प्रसंग नहीं होता, तो पता नहीं ये भागवतम कैसा होता। इट्स वंडरफुल एक्चुअली। तो भगवान जो है, ये भगवान के फेवर करने के अपने तरीके हैं। आप समझ, जैसे कल महाराज बता रहे थे कि जब वो व्यक्ति तब तक विनम्र नहीं बनता जब तक उसकी बेइज्जती नहीं होती है। वो विनम्र क्यों बनेगा, क्यों बनने लगा वो विनम्र? उसके पास सब कुछ है, घर में सब कुछ है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, पत्नी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, रिश्तेदार अच्छा है, तो क्यों विनम्र बनने लगा? भगवान उसकी बेइज्जती करवाते हैं। फिर अगर वो भगवान की सही भक्ति कर रहा है तो ये भगवान की कृपा है। आपको ये कौन सी कृपा है? भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्तों को अपने ऊपर ज्यादा निर्भर रहने जो है उनके ये होना करते हैं कि भक्त जो है उनके ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाए। ये नहीं करते कि उनको धन दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो मुझे, मेरे ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाए, उसके दोस्त से, रिश्तेदार से, सबसे कट्टी कर देंगे। क्यों? उसको समझेगा मेरा अब कोई बचा ही नहीं है, एकमात्र व्यक्ति बचा है जिसके मुझे मेरे पास मुझे जाना है। ये भगवान फेवर करते हैं, ये तरीका है भगवान के फेवर करने का। भगवान हमारी तरफ फेवर नहीं करते, आप समझ रहे, ये भगवान के रिसिप्रोकेट करने का तरीका है एक्चुअली में। तो जो आप, जैसे हम कई बार, हमें भी लगता है, जैसे हम इस्कॉन की एग्जांपल लेते हैं, इस्कॉन में भी कई अलग तक कई लोगों के मन में होता है, आप सभी यहां बैठे हैं, कई लोगों के मन में चल रहा होगा, हम बोलते नहीं है, बात अलग है। इस्कॉन में पैसे वालों की बड़ी पूजा होती है, कई लोग सुनाते हैं इस तरह से। आप लोगों को भी लगता है किसी को ये ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है? सच बताइए, भगवान के सामने बैठे हैं, हाँ या ना? लगता है ना, परंतु ऐसा है नहीं। अब इसी से समझाता हूं आपको कैसे। देखिए, जो व्यक्ति अमीर है और उसने मंदिर को बहुत डोनेशन दिया, ठीक है, तो आप लोगों के भक्त लोग भरे प्रसाद ले लेके देते हैं, आज और आप मांगने जाओ तो कहते हैं प्रसाद नहीं है, आपको दोना नहीं मिलता। आप समझे, आप बर्तन मांज के गए 4 घंटे डीटी किचन में, आपको कोई दोना नहीं दिया। एक व्यक्ति आया और सीजन लेके आया, आप देखोगे वो प्रभु जी भी भाग रहे हैं, वो प्रभु जी भी भाग रहे हैं, वो प्रभु जी भी भाग रहे हैं। प्रभु जी ये लेके लीजिए, ये थाली ले लीजिए, ये राजभोग की थाली है। तो हमें, हमारे मन में ही बड़ा अजीब सा होता है, पैसे वालों की पूजा होती है, भक्तों के मन में भी, सच बता रहा हूँ, इस्कॉन के डिवोटीज के मन में ये सारी चीजें होती हैं, परंतु है नहीं ऐसा। ये दिखने में लग रहा है, अगेन हमें लग रहा है ना पक्षपात होता है, परंतु है नहीं। देखिए असली कृपा क्या है भगवान की, उसको रिस्पेक्ट मिलता है, कृपा नहीं मिलती। उस अमीर भक्ति को रिस्पेक्ट मिलता है, कृपा नहीं मिलती है। यू नो कि वो व्यक्ति रिस्पेक्ट, सम्मान मिलता है उसको, बहुत सम्मान करते हैं लोग, प्रसाद मिलता है, सम्मान मिलता है, बट कृपा, असली कृपा नहीं मिलती। असली कृपा क्या है, भक्त उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते आप माला करो, भक्त उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते आप गाइड, किसी के गाइडेंस में भक्ति करो, भक्त को इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि आप किसी भक्ति इच्छा को ज्वाइन कर लो, भक्त उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते आप इस तरह से करो चीजों को। ये असली कृपा है भगवान की। हमें लगता है हमारा, चूंकि हम भी वैसे ही होते हैं, हम भी उस मेटेरियल कंसेप्ट में होते हैं, हमें लगता है बहुत पक्षपात होता है प्रभु जी, 4 घंटा बर्तन मांज के आया, कोई एक धोने देने को तैयार नहीं है प्रभु जी तो। पर कृपा चाहिए या रिस्पेक्ट चाहिए, दोनों में से आप भी रिस्पेक्ट ले लो, आप भी रिस्पेक्ट ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपके आगे पीछे ही, प्रभु जी कहेंगे लो प्रभु जी राजभोग ले लो, पर कृपा नहीं मिलेगी फिर, या तो कृपा ले लो या रिस्पेक्ट ले लो। तो इंद्र का जो पोजीशन है, जब भगवान यहां उतरते हैं, इंद्र को एज ए रिस्पेक्ट, एज ए ड्यूटी वहां काम करते हैं भगवान वहां पर, तो हमें लगता है कि फेवर हो रहा है। असली कृपा क्या है, जब भगवान जो है उस व्यक्ति को अपने ऊपर आश्रित कर देते हैं, उस डिवोटी को, उस भक्त को जो है केवल अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं हर तरह से, वो असली कृपा है। हम वो कृपा नहीं समझते उसको, क्योंकि हम भी मेटेरियल कंसेप्ट में हैं, हम भी कंडीशन सोल हैं, चाहे हम माला करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी कृपया क्षमा करिएगा, बट क्या है कि ज्यादातर हम में से, हम चूंकि मटेरियल कंसेप्शन में होते हैं, मटेरियल कंसेप्ट होता है, तो हमें भी लगता है ये सब पक्षपात है, यहां भी अमीरों की को चढ़ावा चढ़ता है, अमीरों की पूजा होती है। और अगर ऐसा भी लगता है अगर आपको, तो आप देखिए कि जो जिस व्यक्ति ने इतने मुश्किल से पैसा कमाना, कितना मुश्किल है आज के समय में, और उस पैसे का कोई व्यक्ति त्याग करता है, तो हम उसके त्याग को सलाम करते हैं, उसके उस त्याग का रिस्पेक्ट करते हैं कि उसने उस पैसे को जिसको इसने बहुत मुश्किल से कमाया था, उसको उसने त्याग कर दिया, मंदिर को दे दिया। तो क्या हमें उसको इतना रिसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए कि हम उसको रिस्पेक्ट करें, क्या इतना उसको रिसिप्रोकेट करें कि उनको स्पेशल प्रसाद दे दें? जिसने वो त्याग दिखाया है कि उतनी इतनी गाढ़ी कमाई को, जो इतनी बड़ी मुश्किल से कमाता है, किसी का गर्दन काट के, किसी का पेट काट के कमाता है, उस पैसे को अगर वो दे रहा है व्यक्ति, तो हम क्या उसको, हम उसका रिस्पेक्ट ना करें? करना ही चाहिए, ये भी, इसमें भी कोई गलती नहीं है। भगवान की कृपा को समझने का प्रयास करिए, भगवान किस तरह से कृपा करते हैं। अगर भगवान कृपा देंगे, आप भक्त आपके कृपा करेंगे, तो सेवा में लगाएंगे आपको, आपको अपना संग देगा, क्या भक्तों के संग में रहो, आप भगवान की सेवा करो। आप देखिए महाराज पृथु का जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे महाराज पृथु, और जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो घोड़े चुरा लिए इंद्र ने, उसका कोई मतलब ही नहीं था, बट इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, और घोड़ा चुरा के अलग अलग वेश में जो है वो अलग अलग वेश धारण किया उन्होंने। कहा जाता है कि उसी समय से अप्रसंप्रदाय की शुरुआत हुई, कभी वो सन्यासी का वेश बना लेते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, तो अपसंप्रदाय की जो शुरुआत उसी समय से हुई है। तो बाद में हुआ क्या कि जब उसको मारने के लिए सचमुच तैयार हो गए पृथु महाराज, और उनका बेटा भी बिजतास जो है वो ढूंढते ढूंढते जो है पता लग गया, लगा लिया कि इंद्र कहां पे है, और ब्राह्मण भी तैयार हो गए कि इस इंद्र को मार देते हैं, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए इंद्र को लेके, कह रहे हैं यज्ञ रोक दो, अब बताइए वो जो है वो किसी तरह से आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, मेरा क्या दोष, मैं तो अपना यज्ञ कह रहा हूं, आप इस व्यक्ति को डांटो, जिस व्यक्ति ने घोड़ा चुराया है, जो मेरे साथ अन्याय करा, आप उसके बदले मुझे कह रहे हो कि बंद कर दो। पर उन्होंने क्या किया, यज्ञ बंद कर दिया। उसी समय फिर क्या हुआ, भगवान प्रकट हो गए। भाई अश्वमेध यज्ञ का फल क्या होता, भगवान प्रकट होते, भगवान वैसे ही प्रकट हो गए। 99 यज्ञ में ही भगवान प्रकट हो गए। और उन्होंने क्या कहा पता है आपको, उन्होंने पृथ्वी महाराज को, क्या तुमने गलती की है, इंद्र ने घोड़ा चुराया, अपसंप्रदाय चलाए, पता नहीं क्या क्या किया, तो महाराज ने, भगवान ने क्या कहा पृथ्वी को, तुमने बहुत गलत किया है, इसने जो कुछ भी किया पर तुमने भी डिवोटी जैसा व्यवहार नहीं किया, तुमने भी भक्त जैसा व्यवहार नहीं किया, मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आप भक्त जैसा व्यवहार नहीं करोगे। एक व्यक्ति ने चोरी की, प्रभु जी उसने चोरी की, मैं भी कर लूंगा, नहीं, आप भक्त हो, आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप चोरी करोगे, वो तो करेगा। उनका ये इंद्र जो है ये तीनों जगत का अधिष्ठाता है, ये स्वर्ग का स्वामी है, इसके अंदर ये जो भाव है, ये सकाम भक्त है, इसके अंदर ये ईर्ष्याद्वेष स्वाभाविक है, इसका ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर तुमने इसको मारने की और जो है प्रतिज्ञा की और ये सब किया, ये बहुत गलत है कि तुमने भक्त का परिचय नहीं दिया। किसको गलत ठहराया भगवान ने, पृथ्वी महाराज को, जबकि गलती किसकी थी, इंद्र की, क्योंकि भगवान भक्त से यह अपेक्षा नहीं करते कि वो इस तरह की गलती करे, आप समझ रहे, ये भगवान की कृपा थी, ये कृपा है भगवान की। और फिर भगवान जी ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, और बाद में पृथ्वी महाराज ने अपने प्रजा को जो है उस शुद्ध भक्ति का उपदेश किया। तो हमें लगता है कि कृष्ण ने इंद्र का साइड लिया, पर एक्चुअल में भगवान ने इंद्र का साइड नहीं लिया। आप जितने भी उसमें यज्ञ उस वो देखोगे, जो महाभारत के युद्ध हैं, उसमें कई जगह ऐसे लगता है कि हमें लगता है भगवान ने यहां पक्षपात किया। भीष्म को मरवा दिया, क्या था वो, कैसे मरवाया, अन्यायपूर्ण तरीके से, हमें लगता है ना अन्यायपूर्ण तरीके से मरवा दिया, द्रोणाचार्य के युद्ध से हटवाया, कर्ण को मरवाया, जयद्रथ को, कैसे से मारे गए, परंतु सच में भगवान ने ऐसा किया। भगवान एक्चुअल में ये सारे जो लोग थे ये धर्म के रास्ते में बाधा थे, धर्म को स्थापित करने में एक बाधा बन के खड़े थे। भगवान जिस धर्म की स्थापना करने आए थे इस भौतिक जगत में, उस धर्म की स्थापना में ये सारे लोग बाधा थे। इनके रहते क्योंकि यह धर्म का साथ दे रहे थे, आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि यह धर्म का साथ दे रहे थे तो धर्म की स्थापना इनके जीवित रहते हो नहीं सकती थी। तो फिर भगवान ने जो है क्या किया, एक एक करके इन व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया। हमें लगता है भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया, पक्षपात किया, कई बार लगता है ऐसे, ऐसे डिवोटीज हैं तब भी हमें लगता है कई बार इस तरह से हुआ है। और ऐसे बड़े सारे ऐसे प्रसंग भी आते हैं, जैसे एक बार जो कर्ण है वो एक अस्त्र चलाता है, वो ऐसा अस्त्र था जो अर्जुन को बेध के चला जाता है, मतलब खत्म हो जाते हैं अर्जुन। तो भगवान ने क्या किया उस समय, पता नहीं शायद नारायण अस्त्र था या कौन सा अस्त्र था, तो भगवान ने क्या किया, घोड़े को बिठा दिया 1 फुट जमीन के नीचे, मतलब वो जो छाती बेधने वाला था अर्जुन का, भगवान ने घोड़े को बिठा दिया अपने इशारे से, और घोड़ा बैठ गया तो क्या हुआ, वो जो अस्त्र था वो अर्जुन का मुकुट लेता हुआ चला गया। इसी तरह से एक बार नारायण अस्त्र चला, और नारायण अस्त्र की खासियत क्या है, कि नारायण अस्त्र के सामने से जो कोई भी लड़ेगा नारायण अस्त्र के, वो नारायण अस्त्र और शक्तिशाली होता चला जाता है, यानी उसके सामने से कोई टिक नहीं सकता। अगर आप भागोगे तो नारायण अस्त्र आपकी गर्दन काट देगा जैसे ही भागोगे। ये स्वयं भगवान का अस्त्र है, ये उस अस्त्र की खासियत थी। और छोड़ दिया शायद मेरे ख्याल से कर नहीं छोड़ा था, किसी ने छोड़ा था इसको उधर से, नारायण अस्त्र छोड़ दिया। आप समझिए अब क्या होगा पांडवों का, जो सामने लड़ेगा तो वो नारायण अस्त्र और शक्तिशाली होता चला जाता है, और भागेंगे पीठ दिखाएंगे तो नारायण अस्त्र गर्दन काट देगा, तो फिर क्या करें, क्या हुआ फिर? भगवान ने कहा इसका एक ही उपाय है, कृष्ण ने कहा इसके सामने जो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा नारायण अस्त्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काशी सबको बोला, पांडव पक्ष के सारे लोगों को बोला हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, सब नतमस्तक हो गए। अब नारायण अस्त्र घूम घाम, वह भीम नहीं नतमस्तक हुआ, भीम का मैं अस्त्र से क्यों डरूं? तो नारायण अस्त्र भीम के पास जो है वह पूरी पूरी शक्ति लगाने लगा, और नारायण अस्त्र जो है भीम, भगवान ने देखा वो भीम तो भगवान अर्जुन युधिष्ठिर सब भाग के गए, और उन्होंने जबरदस्ती उसको सिर पकड़ के नीचे कर दिया कि इस नारायण अस्त्र को प्रणाम कर। और जैसे ही प्रणाम किया कि नारायण अस्त्र जो है वापस चला गया। आप समझ रहे हो, जैसे ये नारायण भगवान के जितने भी अस्त्र हैं उसकी यही खासियत होती है। जो हरिदास ठाकुर की जब पिटाई हो रही थी 22 बाजारों में, तो सुदर्शन चक्र जब प्रकट हो गए, तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, हाथ जोड़ दिया सुदर्शन को। अब सुदर्शन की सारी जो शक्ति है वो गई, वो व्यक्ति है वो खुद ही हाथ जोड़ रहा है कि नहीं चाहिए आप मोहपत करो। अब तो क्या हुआ कि सुदर्शन शक्ति जो है वापस हो गए। महाप्रभु जब प्रकाश लीला करते तो बताते हैं कि तुमने सुदर्शन को वापस कर दिया, तो फिर महाप्रभु अपना पीठ दिखाते हैं कि मेरे पीठ पर ये देखो। इस तरह क्या है कि जो कहने का मतलब ये था कि जो भगवान है वो भक्तों का पोषण करना उनका काम है, वो भक्तों का पोषण करेंगे क्योंकि ये उनका स्वभाव है, वो ऋषि प्रकोट करेंगे। पर हमें लगता है कि पक्षपात है, ये पक्षपात नहीं है, ऋषि प्रोकेशन है। अगर आपका कोई बेटा चार बार आपको लाके खिलाने खिलाने के लिए देता है, आपके ही चार बच्चे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका प्रेम उस बेटे के प्रति बढ़ेगा। परंतु आप सम हो, अब भगवान सम कैसे हैं, तो भगवान सूर्य के रूप में या हवा के रूप में, पानी के रूप में सबको अवेलेबल है, उस सबको इक्वली जो है ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीटमेंट है। कि बारिश जो है वो मरुस्थल में भी होती है और समुद्र में भी होता है, तो कोई उसी बारिश से कोई व्यक्ति पुष्ट हो रहा है और कोई व्यक्ति सूख रहा है, उसी बारिश से किसी का नाश भी हो जाता है। तो इसका क्या मतलब कि भगवान किसी का पक्षपात करते हैं और किसी का किसी के साथ जो है वो मतलब मित्रता करते हैं, ये नहीं है। एक भक्त मान लीजिए सुबह उठ के मंगल आरती में 16 माला यहाँ बैठ के आराम से 2 घंटे में बड़े आसानी से कर लेता है, और एक भक्त मंगल आरती से उठा हुआ है 16 माला रात के 11 बजे खत्म होती है बड़ी मुश्किल से, तो आप क्या कहोगे, भगवान उसके प्रति पक्षपात करते हैं और उसके प्रति शत्रुता करते हैं? नहीं, ये उसके गुणों के हिसाब से जो है भगवान ऋषि प्रोकेट कर रहे हैं। अगर व्यक्ति में सतोगुण है, देवताओं में ज्यादातर सतोगुणी होते हैं वो, तो सतोगुण के प्रति भगवान का जो सतोगुणी व्यक्ति है भगवान उसका फेवर करेंगे। फेवर करेंगे का मतलब है कि भगवान के ऊपर उसकी कृपा इक्वल मिल जाएगी, ज्यादा मिलेगी, वो भगवान की कृपा को रिसीव कर पाएगा। पर जो दूसरा व्यक्ति है वो भगवान की कृपा को रिसीव नहीं कर पाता। महाराज बलि, प्रहलाद महाराज, ये वृत्रासुर, ये सब असुर के कुल में थे, पर ये सारे क्या थे, सतोगुणी थे, तो भगवान की कृपा को ये भी आकर्षित कर पाए। ऐसा नहीं कि इनके पर कृपा नहीं करी भगवान ने, जबकि असुर कुल में थे। ये नहीं कि असुर कुल में है तो इसके ऊपर कृपा नहीं होगी, इक्वली कृपा होगी सबके ऊपर। कृपा को रिसीव करने वाला व्यक्ति चाहिए, जिसमें सतोगुण होगा उस कृपा को रिसीव करेगा, जिसमें सतोगुण नहीं होगा उस कृपा को रिसीव नहीं करेगा। तो देवताओं में सतोगुण ज्यादा होता है और इसीलिए वो भगवान के इस जो ये कृपा है उसको रिसीव कर लेते हैं। जो असुर लोग होते हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है, इसीलिए भगवान की इस कृपा को रिसीव नहीं कर पाते। तो उन्हें लगता है कि वो जो कृष्ण हैं या विष्णु हैं वो देवताओं का पक्ष लेते हैं और हमारे प्रति शत्रुता रखते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। एक्चुअल में जो है वो ऐसा है नहीं सच में। अब ऐसे कई भी जो ये जो पूरा भौतिक जगत है इसमें ये ड्वालिटीज होती हैं, इसमें देखिए शत्रुता या मित्रता, हानि या लाभ, यश अपयश, मान अपमान, जन्म और मृत्यु, ये सब इस भौतिक जगत के चीजें हैं, भौतिक जगत की ड्वालिटीज हैं, ये अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत में इनका प्रवेश ही नहीं है। अब भगवान को ये सब चीजें छूती नहीं है। कोई भगवान को अपना शत्रु मानता हो परंतु भगवान उसको अपना शत्रु नहीं मानते। शिशुपाल जब से जन्म हुआ तब से वो भगवान की से शत्रुता करता था, परंतु भगवान उसे शत्रुता नहीं करते थे। जब से जन्म हुआ तब से शत्रुता करता था वो भगवान से, परंतु भगवान उसे शत्रुता नहीं करते थे। और ये और भगवान कितने निष्पक्ष हैं इसी बात से प्रमाणित होता है कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया तो उसकी जो आत्मा है, जो वो सोल था, वो कहाँ गया? कृष्ण की बॉडी में चला गया, उसी सबके सामने देखते देखते उदास सभा में। तो युधिष्ठिर महाराज जो है बिविल्डर्ड हो गए, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया। ये व्यक्ति तो सारा जीवन भगवान को उसने गाली दी, और ये व्यक्ति जो है उसका, ये व्यक्ति का जो जीवात्मा है वो भगवान के शरीर में चला गया। तो उन्होंने उसी समय नारद मुनि से प्रश्न किया कि ये कैसे हो गया, ये सारा जीवन जो है इसने ये कृष्ण को गाली देता रहा। फिर नारद मुनि ने उनको समझाया कि यही भगवान की जो है समता है, क्योंकि भगवान उसको अपना शत्रु नहीं मानते थे। उसको सायुज मुक्ति मिली, वो सायुज मुक्ति भी देखो भक्तों की दो कैटेगरी है, एक ज्ञानी और एक भक्त। जो ज्ञानी है वो भगवान में लीन होना चाहता है, भक्त जो है वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो वो ज्ञानी जो भगवान में लीन होना चाहता है, वो भी आसान नहीं है भगवान में लीन होना, बहुत कठिन कई जन्मों की तपस्या के बाद जो है वो किसी को ये चीजें हासिल होती हैं। और वो जो है वो शिशुपाल को सेकंड से पहले हासिल हो गया, तभी दृष्टि महाराज बहुत परेशान हुए कि ये कैसे हो गया। तो नारद जी समझाते हैं कि यही भगवान की समता है। वो सारा जीवन भगवान के द्वेष रखता रहा, परंतु भगवान को याद करता था द्वेष के हिसाब से ही। ये भगवान की निष्पक्षता ही है कि उनको कोई किसी भी भाव में प्राप्त कर सकता है। कामात गोप्या, काम से गोपी भगवान को प्राप्त कर लेती है। भयात कंसह, भय से कंस ने भगवान को प्राप्त कर लिया, डर से भगवान को प्राप्त कर लिया कंस ने, ये भगवान की निष्पक्षता की वजह से। द्वेषात शिशुपाल, द्वेष से किसने प्राप्त किया भगवान को? शिशुपाल ने। संबंधात वृष्णि, अपने संबंधों से किसने भगवान को प्राप्त कर लिया? वृष्णि वंशियों ने, यदुवंशियों ने भगवान को संबंधों से प्राप्त कर लिया, क्योंकि भगवान से साथ संबंध जोड़ के उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। स्नेहात पांडवात, स्नेह से किसने प्राप्त किया? पांडवों ने, भगवान को स्नेह से पांडवों ने प्राप्त कर लिया। और नारद जी क्या कह रहे हैं? वयम भक्त्या, हम सब यानी भक्त लोग हम कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं? भक्ति से। तो ये छह तरीके बताए हैं जो भगवान को कोई किसी भी भाव में भगवान रिसिप्रोकेट करेंगे। खाली आप शत्रुता करोगे, आप शत्रुता करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, पर आपकी शत्रुता उस लेवल की होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? भयात कंसात, कामात गोपी, द्वेषात शिशुपाल, संबंधात वृष्णि, स्नेहात पांडवात और भक्त्यात वयम। क्या भक्ति से हम सब भगवान को प्राप्त करते हैं? नारद मुनि कह रहे हैं कि हम सब भगवान को भक्ति से प्राप्त करते हैं। ये भगवान की इम्पार्शियलिटी का उदाहरण है, ये कि वो निष्पक्ष हैं। उन्हें कोई शत्रुता से भी प्राप्त कर सकता है, कोई द्वेष से भी प्राप्त कर सकता है, कोई मित्रता से भी प्राप्त कर सकता है, कोई स्नेह से भी और कोई संबंध से भी प्राप्त कर सकता है, और कोई अपने लक्ष्य से भी प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान की निष्पक्षता है। और ये हालांकि जो आगे आने वाला वो है उसमें जो इसमें बहुत सारा डिटेल में बताया गया है, डिटेल में जो है अभी जो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे तो इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है इसके बारे कि भगवान कैसे कैसे जो है किस तरह से निष्पक्ष हैं वो। केवल होता क्या है कि हम जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हैं और एक ही क्लास में 15 स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है और 4 स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और 6 स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, तो जो 4 स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं उसको सिखाएगा कौन फर्दर? भगवान उसको सिखाएंगे ना, मान जो टीचर है उसको ज़्यादा और चीज़ें बताएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि पक्षपात है, जो पढ़ना नहीं चाहता वो ये समझता है कि उसका पक्षपात करते हैं टीचर, पर क्या ऐसा है नहीं, वो पढ़ाई कर रहा है तो वो और आगे बढ़ना चाहता है तो उसको टीचर सिखा रहा है ठीक है, भगवान के साथ संबंध बनाना चाहता है भक्त, तो भगवान कहते हैं ठीक है चल और फैसिलिटी दे देते हैं। तभी कह रहे हैं ना, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपायांति ते, 10वां अध्याय 10वां श्लोक भगवद गीता, कि जो सतत युक्त रहता है मैं उसको बुद्धि देता हूं, मेरा ही चिंतन करता है, मेरे बारे में ही सोचता है, मुझे ही भजता है, तो ऑब्वियसली भगवान उसके बारे उसको रिसिप्रोकेट करेंगे। तो ये रिसिप्रोकेट करना भगवान का पक्षपात नहीं है। कोई स्टूडेंट कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, एक भक्त गुरु के पास बार बार जाता है मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे बताइए गुरु महाराज मेरे से गलती हो रही है उसको समझाइए, तो गुरु उसको बार बार करेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है ऐसे करो ऐसे करो, तो वो दूसरा जो व्यक्ति है जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहता है वो समझा गुरु महाराज के साथ पक्षपात करते हैं। क्या पक्षपात करते हैं? वो नहीं करते, वो केवल रिसिप्रोकेट कर रहे हैं, केवल आदान प्रदान कर रहे हैं। वो भक्त आगे बढ़ना चाहता है तो गुरु उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे एक बेटा लड़ना चाहता है भगवान से, आप पापा फाइटिंग करें, और एक बेटा कहता नहीं मेरे पास बैठो आप, तो कहता चल बेटा तेरे पास बैठ जाता हूं। आप समझ रहे हो, सिर्फ रिसिप्रोकेट कर रहे हैं भगवान, पक्षपात नहीं कर रहे। यदि हम चूंकि द्वंद्वात्मक जगत में रहते हैं तो हमें लगता है कि भगवान जो है वो पक्षपात करते हैं, परंतु ये भौतिक जगत में जो है सॉरी आध्यात्मिक जगत में इस तरह की चीजें जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। और भगवान का देखिए अपना है तरीका उनका, लोगों के जो डिबोटीज है उनके साथ रिसिप्रोकेट करने का। अब आप देखिए पांडवों को, वैसे भगवान ने पांडवों को बचा लिया, अर्जुन को कितने बार युद्ध से बचाया, पर वो क्या बोलते हैं जंगल जंगल फिरते रहे, मारे मारे फिरते रहे 12 साल तक, और भगवान कभी नहीं गए। कितना मुश्किल हुआ, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, कुंती के ऊपर कितनी विपत्ति थी, और ये जो भीष्म को देख लीजिए सारा जीवन जो है वो एक प्रतिज्ञा के उसमें बंधे रहे और बेचारे सब संताप सहते रहे। ये सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान का अपना तरीका है फेवर करने का। फेवर का मतलब रिसिप्रोकेट करने का, फेवर का मतलब पक्षपात होता है, मतलब भगवान का तरीका है रिसिप्रोकेट करने का। तो कैसे करते हैं, ताकि उनका प्रेम अपने प्रति बढ़ाना चाहते थे और उनको केवल अपने ऊपर आश्रित करना चाहते थे वो, पर हमें लगता है हाय हाय ये क्या हो गया मेरे पैसे छिन गए। हमारे पास जब पैसे आते हैं तब लगते भगवान की बड़ी कृपा है, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये भगवान आपको ठग रहे हैं, भगवान की कृपा नहीं है, ये सकपट कृपा है, ये भगवान की कपट जो है सकपट कृपा है, ये पैसे दे रहे हैं आपको क्योंकि आपका बुद्धि खराब हो जाता है उससे। क्योंकि जो लक्ष्मी बिना नारायण के सहयोग के आती है वो उल्लू पर बैठ के आती है, आपको पता है लक्ष्मी का एक मान उल्लू भी है, तो आदमी को उल्लू बना देती है, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, इस पैसे का करना क्या है। तो भगवान लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है तो कमल के फूल पर आती है, फिर तो फिर आपको भी खिला देंगी, फिर वो जब उल्लू पर बैठ के आएंगे तो आपको भी उल्लू बना देगी, इससे उल्लू वाला धन मत लीजिए। तो हमें लगता है भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, सब चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है प्रभु जी आजकल, तो बहुत भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा नहीं है ये सचमुच में भगवान की कृपा है ही नहीं। भगवान तो मैं तो आपको मोती के बदले एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, पता चला एक बच्चे के हाथ में करोड़ों रुपये का डॉक्यूमेंट्स है और एक चॉकलेट ला के ले, बेटा ये 5 रुपये का चॉकलेट ले लो, ये वाले दे दो कागज, अच्छा लाओ, अच्छा पैसे से छूट रहे हो, ले पकड़ पैसे, चल तेरे को भक्ति नहीं करनी है समझ में आ गया मुझे, चल ये पैसे ले। तो भगवान तो आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम समझते हैं बड़ी कृपा हो रही है, प्रभु की बड़ी कृपा है, भक्ति भी चल रही है, धन भी बड़ा आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है, परंतु है नहीं ऐसा। और जिससे हम जैसे किसी के उसमें देखें, जैसे विदुर के जीवन में, सुदामा के जीवन में, आप जिसके भी देखो कितने कष्ट हैं उन्हें उनके जीवन में। अब देखिए जब सुदामा राजमहल से बाहर निकलता है द्वारका के, तो वो सोचता है भगवान ने मेरे को कुछ नहीं दिया, तो क्या एक इमीडिएटली उनके दिमाग में क्या आता है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। वो समझ गए होंगे कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। वो द्वारका नाथ है, मेरा हमेशा भला चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं दिया और वैसे ही वापस भेज दिया। कि मुझे समझते, आप समझ गए क्या भाव आया भक्त का, इतने बड़े व्यक्ति के पास मांगने गया और जब बाहर निकला तो पता चला कुछ नहीं दिया, खाली हाथ वापस आया। लेकिन उस समय भक्त की टेस्टिंग थी, उसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं आई सुदामा के अंदर कि भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत किया। इतने बड़ा व्यक्ति था, आप अंबानी के पास जाओगे 100 रुपये मांगने के लिए और पता चला उसने दी भी नहीं आपका, एक तो 100 रुपये मांगने आया, इतने बड़े व्यक्ति के पास उसने वो भी नहीं दिया। आप समझ रहे हो, ऐसे ही होते हैं ये लोग, तब कह क्या क्या बोल पड़ेंगे। भगवान के पास वो गए पत्नी के कहने पर कुछ, पर जो संकोच बस जो है वो भगवान को बोल भी नहीं पाए कि मुझे पत्नी ने भेजा कुछ चीज उसके लिए, मैं मिलने आया हूं। उन्हें भगवान से क्या कहा कि तुम्हारी भाभी ने बोला कि अपने मित्र से मिल के आओ। अब ये नहीं कहा कि क्यों भेजा है, तो भगवान तो परमात्मा है। तो देखिए सुदामा का भाव, लेकिन भगवान का अपना रिसिप्रोकेट करने का भाव होता है, वही है कि सतोगुण में जो भक्ति सतोगुणी होगा भगवान उसको पुष्ट करेंगे, क्योंकि देवता सतोगुणी होते हैं, सतोगुण में होते हैं, तो भगवान उसको पुष्ट करेंगे, वो भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे, क्योंकि भगवान का काम पोषण करना है। जो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति है उसको लगेगा कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है, क्योंकि उसको भगवान की कृपा को आकर्षित करने की शक्ति नहीं है उसमें। भगवान उसके ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं और उसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, पर वो कृपा लेना नहीं चाहता। अब भगवद गीता के 14वें अध्याय के 11 से लेकर 13 श्लोक में जो है इस चीज का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है, 11वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक में, कि किस किस तरह से जो सतोगुण जब ज्यादा प्रबल होता है तो भगवान की कृपा कैसे ज्यादा मिलती है उसमें, क्योंकि भगवान की कृपा को सीधे सीधे वो आकर्षित कर पाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन है, आगे कल से जो है सुखदेव गोस्वामी जो भी भक्त आएंगे वो कल से सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे कि भगवान निष्पक्ष हैं, जो है पक्षपात नहीं है, पक्षपात नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ कृपा के मतलब नहीं है, यहाँ एक्चुअली में क्या है कि दोनों अपने आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इसी स्कंद में इसका आंसर देते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का, ये उसके अपने कर्म का फल है एक्चुअली में, उसने जो कर्म किए हैं उसके फल के हिसाब से जो है वो उसको इस तरह की चीज़ें सामने उपस्थित हो गया है। किसी के लिए मान लीजिए पैसा कमाना बहुत ईजी है कि वो 50,000-1,00,000 रुपये बड़े आसानी से कमा लेता है, और किसी के लिए 5,000 रुपये कमाना बहुत डिफिकल्ट है। तो दोनों के कर्म हैं एक्चुअली में, परंतु अब जो दोनों दो परिस्थितियों में है, ठीक है, वो पिछले जन्म के हिसाब से प्लेसमेंट है उसकी। एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ के आया, एक टीचर जो है वो प्रमोशन से आया है या सिफारिश लगा के आया है, परंतु अब प्रकट होगा कि असली टीचर कौन है। क्योंकि जब फील्ड में प्रभुपाद लिखते हैं इसी के बुश में कि किसी भी व्यक्ति को आप ये नहीं समझ सकते कि कौन अच्छा भक्त है कौन खराब भक्त है, जब वो काम करेगा, जब आप उसके एक्शन देखोगे तो पता लगेगा कि इसके ऊपर भगवान की कृपा कितनी है। वो अमीर व्यक्ति है चाहे अच्छा कमा रहा है या गरीब व्यक्ति, अगर वो अच्छे कर्म उसके अब भगवान के प्रति अच्छे भाव हैं तो उसके अच्छे कर्म हैं। परंतु एक गरीब व्यक्ति भी जैसे बाहर बैठ के वो भगवान को कोस रहा है और गाली दे रहा कि मेरे को कुछ नहीं दिया, तो उसका अच्छे कर्म नहीं है, उसके ऊपर कृपा नहीं है। अगेन उसके कर्म साबित करेंगे आने वाले कि वो किसके ऊपर भगवान की कृपा। प्रभुपाद लिखते हैं इसी के 3-4 श्लोक के बाद इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि ये पता चलेगा उसकी एक्टिविटी से, आउटर लुक से नहीं पता लगेगा कि किसके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा है। उसके कृपा तब पता लगेगी जब वो एक्शन करेगा कि किस तरह का एक्शन करता है। अगर कोई अमीर व्यक्ति भी भगवान के लिए उसका एक्शन है कि हर तरह से भगवान की कृपा आकर्षित करने के लिए और भी प्रयास कर रहा है अपनी सुविधा को, अमीर व्यक्ति के पास सारी सुविधा है, उस सुविधा का इस्तेमाल वो भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा है। एक गरीब व्यक्ति सारा समय भगवान को कोसने में और गाली देने में लगा देता है तो इसका मतलब उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। हमें सोच के नहीं रखना चाहिए कि गरीब है तो इसके ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है, ये गलत फहमी है। अगेन फिर इसका मतलब हम पक्षपात करते हैं, ये एक्शन से पता लगेगा। जैसे आप देखो अम्बरीश महाराज का, अम्बरीश महाराज किसने अपनी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगा दी, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। और इसी में एक चरित्र आता है चौथे स्कंद में आया है महाराज बेन का। महाराज बेन के पास बहुत संपत्ति थी, पर महाराज बेन ने क्या किया, अपने आप को भगवान घोषित करने में सारी चीजों को लगा दिया। अगर वो सचमुच मंदिर में और भक्तों पर लगा रहा है तो मानना चाहिए, अगर नहीं लगा रहा तो सब कपट कृपा है, वो अंतर है आगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।